नमस्ते साथियों, मैं अपना श्रीवास्तव बहरेश्म वाणी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पेड़ों को ऐसा ही न काटो कि एक दिन खुद ही बह जाओ। कुछ ऐसे ऋण होते हैं जिन्हें चुकाने के बारे में बहुत कम लोग ही सोचते हैं। हम पानी के भी ऋण को और हवा के ऋण को, मिट्टी के ऋण को भी चुकाते हैं। हमें गलतफहमी है कि हवा और पानी मुफ्त में हमें मिलता है, इसके लिए किसी को चुकाना नहीं पड़ता। लेकिन सावधान रहिए, यह चुकाना पड़ेगा। जो इंतजार तो कीजिए, अभी पानी और हवा कभी कभी खरीदनी भी पड़ सकती है। कोरोना में सब लोगों ने ऑक्सीजन खरीदा, वो एक प्रकार की हवा ही तो थी। एक समय आएगा जब हर पल नगद भुगतान से खरीदनी पड़ेगी, तब उस ऋण का आभास होगा जो हमने सदियों में नहीं चुकाया है। ये हवा और पानी कोई आज के नहीं है, सदियां लगती हैं तब सुंदर हवा पानी से लैस पहाड़ खड़े होते हैं और उन पर पेड़ लहलाते हैं। जहां बस्तियां बसती हैं, ऐसी एक बस्ती हिमालय की गोद में बसी थी, जहां एक बच्ची अपनी माँ के साथ लगभग रोज की लकड़ी चुनने जंगल जाया करती थी। रोज कुछ सूखी लकड़ियां मिल ही जाती थी कि कुछ भोजन जीवन के लिए पकाया जा सके। एक दिन शायद बच्ची का लकड़ी चुनने जाने का मन नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा, इतने तो पेड़ हैं, किसी पेड़ की बड़ी डाली काट कर रख लेते हैं, लकड़ी सूखती रहेगी और भोजन बनता रहेगा, रोज रोज जंगल नहीं जाना पड़ेगा। वास्तव में ज्यादातर लोग यही तो करते हैं, पेड़ काट कर खूब सारी लकड़ियां एक ही बार में जुटा लेते हैं और खूब लकड़ियां जलाते हैं, गुमान में जीते हैं और रोज लकड़ी चुनने जाने वालों को पिछड़ा हुआ या कम बुद्धि वाला समझते हैं। पर यहाँ तो कहानी अलग थी और उनका मुख्य किरदार अलहदा माँ ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, पेड़ कैसे काट लेंगे, ये तो पेड़ हमारे भाई बहन है, यह तो हमारा मायका है, कोई अपना घर अपने हाथों से काटता है या उजाड़ता है क्या। माँ की बात सुन बच्ची को खूब आश्चर्य हुआ कि माँ क्या कह रही है, तो माँ ने और प्यार से समझाया, पेड़ों की जड़ें हाथों की तरह होती हैं, वे जमीन को पर्वत पर थामे रखते हैं, वे भारी बारिश और पिघलती बर्फ का पानी भी थामती हैं। अगर कभी किसी ने हमारे इन भाइयों और बहनों को काटा तो हमारा पूरा गांव ही बह जाएगा, तब हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। बच्ची को एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास हुआ। पेड़ अचानक ही बहुत बहुमूल्य लगने लगे, ये फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं और हमारे गांव और जमीन को भी बचाते हैं, इनसे बढ़कर हमारा सगा कौन है। बच्ची के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। संवेदना यह है कि हम वह स्तर मन में बना ही नहीं पाते कि उसे किसी पेड़ या सूखी लकड़ी लेते हुए भी कुछ संकोच होने लगे। वह पेड़ों के प्रति हमेशा के लिए गहरे आभार भाव में भर गई। हम पर पेड़ों का जो ऋण है उसे उस बच्ची ने समझ लिया। खैर, ऐसे बहुत से सजग बच्चे बच्चियां और बुढ़े बुजुर्ग हैं जो पेड़ों को भाई बहन मानते हैं, पर हमारी सरकारों ने ऐसा कब माना है कि उसके लिए पेड़ जंगल में ऐसे संसाधन मात्र हैं जिनका मनमाना दोहन कर लिहाज से जायज है। वैसे भी आज से 50 साल पहले सरकारी वन विभाग कुल्हाड़ी और माचिस के लिए खास बजट रखता था और सोचता था कि पेड़ कभी खत्म नहीं होंगे, काटते चले आओ, क्या फर्क पड़ता है। वैसे तो 50 साल पहले ही जंगल उजड़ने लगे थे और पहाड़ खिसकने लगे थे, नदियां पहाड़ों में भी तबाही मचाने लगी थी, लेकिन वन विभाग के अहंकार की तंद्रा नहीं टूटी थी। वे जंगल काटने कटवाने की विषम साजिश कर रचते थे। एक दिन उन्होंने गांव के पुरुषों को कहीं अलग काम से बुलाया और पीछे से पेड़ काटने वाले को भेज दिया। सोचा कि महिलाएं विरोध नहीं कर पाएंगी, पर तब तक उस सजग माँ की बच्ची गौरा देवी यानी 48 साल की हो चुकी थी। वह अपनी 27 सदस्यीय महिला मंडली को लेकर पेड़ बचाने निकल पड़ी। उन्हें लौट जाने के लिए खूब डराया गया, उन पर बंदूक तानी गई, पर वह हटने को तैयार नहीं हुई। सारी महिलाएं पेड़ कटने जा रहे हैं पेड़ों से जा लगी। निडर गौरा देवी ने ऐलान कर दिया, हम पेड़ों को गले लगा रहे हैं, यदि आप पेड़ काटेंगे तो आपको पहले हम पर कुल्हाड़ी चलानी पड़ेगी। यह खबर पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गई। उत्तराखंड की रैड़ी गांव में सबकी जिज्ञासा का केंद्र बन गया। गौरा देवी ने नेतृत्व में सभी महिलाएं लकड़हारों को पेड़ काटने से रोकने के लिए लगातार 3 दिन व रात सतर्क रही। पेड़ काटने का हर बहाना मुंह के बल जा गिरा। अंततः प्रशासन शर्मसार हुआ और अफसर उल्टे पांव लौट गए। पहाड़ों में पेड़ों को बचाने की लहर दौड़ गई, जिसे चिपको आंदोलन के नाम से हमेशा याद किया जाता है। सरकार को अपने कुछ नियम बदलने पड़े थे। आज जब भी पेड़ों पर विपदा आती है, शहरों में प्रदूषण जानलेवा हो जाता है, तो गौरा देवी अनायास याद आती है। काश हम सब प्रकृति का भी मूल समझ पाते। धन्यवाद।